वही राधिका की चोट को देखकर वो थोड़ा सा चौंक गया था और वो राधिका को संभालना चाहता था, उसकी केयर करना चाहता था, लेकिन राधिका ने बिना किसी इमोशन के उसकी तरफ देखा। सब परेशान हो चुके थे, अब करें तो क्या करें, कैसे रौनक की मदद करेंगे। रौनक के दर्द की तड़प देखकर आहान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो अपने सामने रौनक को इस तरह रोते बिलखते तड़पते हुए नहीं देख पा रहा था। अपने दिल को मजबूत करते हुए आहान चीखते हुए बोला, मैं मदद करूंगा उसकी। अब जैसे ही आहान ने ये बताया, सब लोग आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से आहान को देखने लगे। वहीं ध्रुव भी आहान को देखने लगा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। जल्दी ही आहान ने बिना किसी की बात सुने और बिना किसी परमिशन के आगे बढ़कर रौनक को गोद में उठा लिया और सीधा रौनक को अपने कमरे में ले गया। वहीं सब लोग अब काफी हद तक मायूस हो उठे और सब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे, क्योंकि इस वक्त वहां रौनक और आहान के बीच जो कुछ होने जा रहा था उसमें ना तो रौनक की मर्जी शामिल थी और ना ही आहान की मर्जी शामिल थी। लेकिन इस वक्त रौनक की जान बचाने के लिए आहान को उसके साथ शारीरिक रिश्ता बनाना ही था, क्योंकि अगर वो उसके साथ आज शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो रौनक की जान जा सकती है। कमरे में जाकर आहान ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन आहान की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रौनक को इस तरह से टच कर सके। रौनक की तरफ वो आकर्षित था, लेकिन इस तरह से वो रौनक को बिना इजाज़त के कैसे छू सकता था। लेकिन कमरे में जाने के बाद रौनक और ज़्यादा आक्रामक हो गई थी। उसने अपने कपड़े बुरी तरह से उतारने शुरू कर दिए थे। तब आहान रौनक को ऐसा बर्ताव करते देखकर थोड़ा सा इरिटेट हो गया था और उसने फटाफट से रौनक को पकड़ा और खींचते हुए बाथरूम में ले आया और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया, ताकि रौनक को ठंडे पानी में बेहतर लग सके। भले ही रौनक के शरीर पर शावर चल रहा था, लेकिन अंदर से उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर की त्वचा जल रही हो। ठंडे ठंडे पानी में भी उसे सुकून नहीं मिल पा रहा था। और तब रौनक को शावर के नीचे खड़ा करने के बाद आहान दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो रौनक के साथ किसी तरह की कोई हरकत करे। लेकिन तभी रौनक ने अपने आप को कपड़ों से आज़ाद कर दिया था, क्योंकि वो और कपड़े अपने शरीर पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं आहान ने अब जैसे ही पीछे मुड़कर देखा और रौनक को बिना कपड़ों के देखा तो वहां की संयमता गुम हो गई थी और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जल्दी ही आगे बढ़कर उसने अपने होठों से रौनक के होठों पर रख दिया था, उसे शांत करने लगा था। वहीं दूसरी ओर रश्मि, आस्था, राधिका तीनों एक साथ बैठे हुए थे और तीनों के ही चेहरों पर दुख के भाव थे। तब तक ध्रुव फर्स्ट एड बॉक्स लेकर राधिका के पास आया और उसके सर की सिलाई करने लगा। क्योंकि राधिका को काफी गहरा कट लगा था, अब उसने राधिका पर कुछ एंटीसेप्टिक लगाया तो राधिका के मुंह से चीख निकल गई थी। और सुमित तुरंत बिना किसी की परवाह किए राधिका के पास जाकर बैठ गया था। उसके कंधे को छूकर बोला, तुम ठीक हो जाना। अब राधिका सुमित का इस तरह का कंसर्न देखकर चौंक गई, लेकिन उसने सुमित को कोई जवाब नहीं दिया। और तब ध्रुव लाचारी से बोला, आई एम सॉरी राधिका दीदी, लेकिन ये थोड़ा सा जलेगा, लेकिन ये लगाना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले, अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर ध्रुव ने राधिका की सिलाई पूरी कर दी। वहीं अरमान कुछ दूरी पर खड़े होकर आस्था की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा था, और आज जिसकी वजह से आस्था की आंखों में आंसू आए हैं वो शख्स थी डिंपल। इसीलिए अरमान ने डिंपल को ऐसी सजा देने का फैसला किया था जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर, जो कि बेहोश था और इस वक्त अरमान सिंघानिया के फार्म हाउस में था, और मारिया और टाइगर इस वक्त उसके पास थे। अब जैसे ही अबीर को होश आया वो अपना सर पकड़कर बैठ गया था और सोचने की कोशिश करने लगा कि आखिरकार वो यहाँ आया तो कैसे आया। वो अरमान के फार्म हाउस को अच्छी तरह से जानता था और वहां पर उसे कोई नकारात्मकता की फीलिंग तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिरकार वो यहाँ कैसे आ सकता है। तभी मारिया ने अबीर को होश में आता हुआ देखकर उसे कहा, तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अबीर सिंह राठौर, फिलहाल तुम ये देखो। ऐसे बोलकर मारिया ने जल्दी ही एक वीडियो क्लिप अबीर को दिखानी शुरू कर दी थी, जिसमें अबीर को अगवा करने से लेकर जिस तरह से वीर रायचंद अबीर की जान लेना चाहता था वो सारी बातें वीडियो में थी और अरमान ने उसे बचाया था। अब तो अबीर की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिरकार अरमान उस पर एहसान कैसे कर सकता है। और उस वक्त ड्रिंक उसने की थी वो भी सिर्फ और सिर्फ उसने अरमान सिंघानिया की वजह से ही की थी, तो इसीलिए अबीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपना गुस्सा और अपनी झुंझुनाहट किसी न किसी पर उतारना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अबीर ने खुद को शांत करते हुए कहा कि इस वक्त अभी अपना असली चेहरा अरमान को नहीं दिखा सकता था, उसे अरमान से दोस्ती करने का नाटक जारी रखना था, क्योंकि अरमान के पास आस्था थी और आस्था को अबीर सिंह राठौर हर हाल में हासिल करना चाहता था। तब अबीर दिखावा करते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मारिया और टाइगर, तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन साथ ही मैं मिस्टर अरमान सिंघानिया को पर्सनली भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसीलिए आप उन्हें खबर भिजवा दो कि अबीर सिंह राठौर उनसे मिलने के लिए आ रहा है। एक पल के लिए मारिया और टाइगर ने एक दूसरे को देखा और उसके बाद उन्होंने अरमान को टेक्स्ट मैसेज कर दिया था कि अबीर सिंह राठौर मेंशन आ रहा है। लेकिन सिचुएशन इस वक्त ऐसी थी कि अरमान सिंघानिया इस वक्त किसी का भी मेंशन में आने देना नहीं चाहता था, इसीलिए अरमान ने टाइगर मारिया को बोल दिया कि अबीर सिंह राठौर से मीटिंग कल की फिक्स करें। और जैसे ही अबीर ने यह सुना वो थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि उसकी हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है और अगर ऐसी हालत में वो आस्था के सामने जाएगा तो ना जाने आस्था क्या सोचेगी, इसीलिए उसे प्रॉपर एक दिन के रेस्ट की जरूरत है, उसके बाद वो आस्था से मिलेगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अबीर अपने विला में चला गया था। उसने सोचा कि अगली सुबह वो अरमान से मिलने जाएगा और साथ ही साथ वहां जाकर अरमान के साथ ही वो आस्था की भी झलक देख लेगा। वहीं दूसरी ओर देव अभिमान सिंघानिया था अच्छी तरह से इलाज करवा रहा था। अभिमान को हर घंटे ड्रग्स लेने की आदत थी क्योंकि अमरीश ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी और हर घंटे उसे ड्रग्स की ऐसी लत आदत लगा दी थी जिसकी वजह से उसे अब ड्रग्स की जरूरत पड़ने लगी थी। वहीं देव सही से अभिमान को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अभिमान को कुछ भी याद नहीं था, ना तो अपना पिता ना ही अपना बेटा अरमान सिंघानिया। वहीं अरमान चाहता था जब तक अभिमान ठीक नहीं हो जाता तब तक दादाजी को उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, और देव ने अभिमान की जो हालत थी वो उसकी पूरी डिटेल अरमान को बता दी थी। वही अरमान एक नज़र सबकी ओर देखता हुआ इस वक्त अपने कमरे में चला गया था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करे। आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन आज प्रॉब्लम कुछ और थी। आज सीधे सीधे आहान किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। वहीं दादाजी भी अब काफ़ी उदास थे क्योंकि इस तरह से किसी लड़की के साथ बिना उसकी मर्जी के शारीरिक संबंध बनाना बहुत बड़ी बात थी, तो इसीलिए सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सिचुएशन में बोलें तो क्या बोलें। आखिर एक तरह से आहान रौनक की जान बचा रहा था।
लेकिन रौनक की जान तो बच रही थी, लेकिन उसकी इज्जत आबरू सब कुछ खोने के बाद। वही बाथरूम में आहान के किस्से रौनक को थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ और जल्दी ही वो बेकाबू होकर खुद आगे बढ़कर आहान को पागलों की तरह किस करने लगी थी। आहान भी अब रौनक के किस में पूरी तरह से खो गया था और जल्दी ही रौनक ने आहान को भी उसके कपड़ों से आज़ाद कर दिया था। और कितने ही घंटे तक बाथरूम में एक दूसरे को किस करने के बाद बाथरूम के फ्लोर पर ही आहान ने रौनक को लिटा दिया और वो उसके साथ पूरी तरह से शारीरिक संबंध बनाने लगा था। रौनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त उसकी क्या कंडीशन है, लेकिन पहली बार शारीरिक संबंध होने की वजह से रौनक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन ड्रग्स के नशे में वो कुछ भी समझा नहीं पा रही थी। वहीं आहान ने जैसे ही देखा कि काफी ज्यादा खून का निशान उस वक्त फ्लोर पर है तो वो समझ चुका था कि इस वक्त रौनक कितनी ज्यादा दर्द में है। वो रौनक को पूरी तरह से कंफर्टेबल और फील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रौनक और ज्यादा आक्रामक हो रही थी क्योंकि इस वक्त उसके सर पर नशा हावी हो गया था। और जब कितने ही घंटे तक वो बाथरूम में एक दूसरे के साथ अंतरंग होते रहे और तब अचानक रौनक की आंखें भारी होने लगी। करीब 3 से 4 घंटे बाद आहान ने देखा कि रौनक अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी है, साथ ही साथ उसकी आंखें भी बंद होने लगी हैं। तब जाकर आहान ने रौनक को छोड़ा और उसके बाद उसे नहलाकर उसने रौनक को अपना ही बाथरूम पहना दिया था। उसे गोद में ले जाकर उसने सीधा अपने बेड पर उसे लिटा दिया और चादर से ढंग दिया था। और एक नजर आंखें बंद की हुई रौनक की ओर देखकर उसके माथे को चूमकर आहान जुनून भरी आवाज में बोला, आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ आहान सिंघानिया की हो, सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी मिस हवा हवाई। आहान वापस बाथरूम में आकर कितने ही घंटे तक नहाता रहा। आहान ने यह कर तो दिया था, लेकिन उस वक्त उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि इस तरह से उसने पहली बार किसी लड़की के साथ रिश्ता बनाया था, तो उसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब किस तरह से रौनक को फेस करेगा। उसे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा। वो कितने घंटे तक नहाने के बाद आहान कपड़े पहनकर बिना किसी से मिले वहां से बाहर निकल गया और गाड़ी लेकर सड़कों पर घूमने लगा था। आहान बिना किसी को कुछ बोले वहां से बाहर निकला तो सब लोग समझ चुके थे कि आहान इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहता है। वहीं दादाजी ने एक फैसला ले लिया था और वो फैसला था रौनक और आहान की शादी करने का। इसीलिए दादाजी ने रश्मि की ओर देखते हुए कहा, बेटा देखो, अगर रौनक बिटिया जागेगी और ये सब कुछ होगा, हमें लगता है कि हमें अब रौनक बिटिया और आहान की शादी करवा देनी चाहिए। अब जैसे ही दादाजी ने इस सिचुएशन के सलूशन के बारे में बातें की, सब लोगों को कहीं ना कहीं ये फैसला ठीक ठाक नजर आ रहा था। सही तो है, अगर वो दोनों अंतरंग हो गए हैं तो उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन आस्था को ये बात पसंद नहीं आती और वो टोकते हुए बोली, नहीं दादाजी, हम इस तरह से रौनक की जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते हैं। और आहान भैया ने जो कुछ किया सिर्फ रौनक की जान बचाने के लिए किया है, तो हमें सबसे पहले रौनक के होश में आने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद आहान भैया से उसे शादी करनी है या नहीं करनी है ये डिसीजन हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। अब जैसे ही आस्था ने यह कहा, सभी लोगों को आस्था की बातों में दम नजर आने लगा और सभी ने उसके हां में हां में हां दी। वहीं दूसरी ओर अरमान अपने कमरे में था, साथ उसे देव का मैसेज भी मिल चुका था और मारिया टाइगर को भी उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि वो अबीर को कल उससे मिलने के लिए बुलाए और अबीर से घर पर नहीं बल्कि बाहर ही मिलेगा, क्योंकि अरमान नहीं चाहता था कि अबीर सिंह राठौर आस्था से ज्यादा मिले। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, रह रहकर वो हादसा अरमान का पारा हाई कर रहा था, क्योंकि जो कुछ रौनक के साथ हुआ था ये सब कुछ आस्था के साथ भी होने वाला था। तो यही सोच सोच कर उसका दिमाग फटने को तैयार था। वहीं ध्रुव बिना किसी इमोशन के वहां बैठा हुआ था और साथ ही साथ उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी घटिया लड़की से कैसे प्यार किया था। उस वक्त वहां का माहौल काफी ज्यादा तनाव भरा था, हर कोई बेचैन था। ठीक उसी वक्त राजेश वहां सबके लिए गर्मा गर्म चाय कॉफी लेकर आया, क्योंकि इस वक्त सबका मूड बेहद खराब था। किसी ने कितने घंटे से ना तो कुछ खाया था ना पिया था। कुछ चाय देने के बाद उसने सबसे बोला कि उसने खाना लगा दिया है, तो आप सब खाना खा लें। तब तक अरमान कुछ देर कमरे में सोचने के बाद वापस से नीचे आ गया था। अरमान को चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसे रह रहकर यह लग रहा था कि रौनक की जगह आस्था भी हो सकती थी, और अगर आस्था को इस तरह का कोई ड्रग्स दिया जाता तो उसके बच्चे पर सीधे सीधे असर हो सकता था और शायद उसके बच्चे की जान भी जा सकती थी। अरमान ये सोच सोच कर ही पागल होता जा रहा था। इसके लिए उसने डिंपल के लिए इतनी खतरनाक सजा तैयार की थी जिससे होने के बाद हर किसी की रूह कंपने वाली थी। लेकिन कुछ था जो अरमान के इस फैसले को रोक रहा था, वो था ध्रुव का प्यार। अरमान को पता था कि ध्रुव डिंपल से प्यार करता है, वैसे इस बात की भनक लग चुकी थी, लेकिन अभी इस सिचुएशन में उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ध्रुव को यह पता चलेगा कि अरमान ने डिंपल के लिए प्लान करने का सोचा है तो शायद ध्रुव अरमान से नफरत करे, और अरमान ये बिल्कुल नहीं चाहता था।